जैसे जैसे शाम ढल रही थी, पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर थीं। अरमान का बाग पहले से ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन आज सुंदर लाइटों, सजावट और फूलों के नए आकारों से वो किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। पार्टी रात 9 बजे शुरू होनी थी। चूंकि अभी 7 बजे ही थे, अरमान ने सोचा क्यों ना एक बार सारी तैयारियां चेक कर ली जाएं। कुछ सोचकर अरमान बाग में चला गया और एक पल के लिए तो वो भी पलक झपकना भूल गया। उसने सोचा नहीं था कि उसका बाग इतना खूबसूरत भी लग सकता है। अरमान की सारी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। उसे पता था उसकी ताकत का अंदाज़ा लोग इसी बात से लगा लेंगे कि वो कितनी खूबसूरत जगह पर रहता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब अरमान बेसब्री से अपने मेहमानों का इंतज़ार करने लगा था। उसे एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। वो सोच रहा था सभी जल्दी आएं और उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना शक्तिशाली है, खासकर राजवीर। धीरे धीरे वक्त करीब आ रहा था और अरमान के विदेशी दोस्त आना शुरू हो गए। हर कोई एक से बढ़कर एक था। लगभग 50 चौपर एक एक करके आए थे, जिनमें अरमान के विदेशी साझेदार थे जो एकदम गोरी महिलाओं का हाथ थामे पार्टी में शामिल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर आ गई हों। अरमान ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी एक एक करके बाग में चले गए। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखें चारों ओर देखकर हैरत से फटी जा रही थीं। जितनी भी लड़कियां थीं, वे तो मानो खोसी गई थीं वहां की खूबसूरती में। अरमान बहुत अच्छे से सभी को संभाल रहा था। उन लोगों का व्यवसाय, शक्ति, सब कुछ उन लोगों पर ही निर्भर था, इसलिए वो उन सभी को VIP ट्रीटमेंट दे रहा था। लगभग सभी लोग पार्टी में आ गए थे, लेकिन जिस मुख्य व्यक्ति के लिए पार्टी रखी गई थी उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। राजवीर अभी तक पार्टी में नहीं आया था। अरमान ने तेजा को बुलाया और राजवीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा। अभी तेजा वहां से जाने ही वाला था कि ठीक सामने से 6 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड के बीच से चलता हुआ काले रंग के सूट में राजवीर आ रहा था। राजवीर बेहद आकर्षक लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वही यहां का राजा है और बाकी सब उसके सिपाही। पार्टी में मौजूद सभी की नजरें राजवीर पर थीं। दोनों भाई उसे देखते रह गए। अरमान ने नहीं सोचा था राजवीर की एंट्री इतनी प्रभावशाली होगी। उसे तो लगा था जैसे वो साधारण शर्ट जीन्स में ऑफिस आ गया था मिलने, ऐसे ही वो साधारण कपड़ों में पार्टी में भी आएगा। लेकिन अब तो जैसे अरमान के अरमानों पर पानी फिर गया था। राजवीर आते ही अरमान से गले मिला और बोला, सो सॉरी ब्रो, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उम्मीद करता हूँ आप नाराज नहीं होंगे। ओह कोई बात नहीं ब्रो, अगर आप बता देते तो मैं अपना निजी चॉपर भेज देता, अरमान ने अपना थोड़ा रवैया बनाए रखते हुए कहा। इससे आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे सारे दोस्त यहाँ समय से पहले ही अपने अपने चॉपर्स में आ गए हैं। अरमान अपने आप को राजवीर के सामने साबित कर रहा था, क्योंकि राजवीर की शानदार एंट्री उसे अंदर तक झकझोर गई थी। राजवीर ने अरमान से कहा, ब्रो मुझे पता है आप चॉपर भेज देते, लेकिन आप जानते हैं मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं कार से आया हूँ ताकि इसी बहाने में शहर देख सकूँ, राजवीर ने कुछ जताते हुए कहा। तभी अरमान विषय बदलते हुए बोला, छोड़ो अब आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर वे सभी मेहमानों के बीच चले गए। हर कोई राजवीर से गर्मजोशी से मिल रहा था, क्योंकि उसकी शानदार एंट्री ने सबको एहसास करा दिया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। सबसे परिचय के बाद वे सब अपनी अपनी मेज़ों पर बैठ गए। सब अपने आसपास देख रहे थे, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था और सामने मंच पर शहर की मशहूर मॉडल्स बेली डांस कर रही थीं। अरमान सबकी आंखों में झांक रहा था कि हर कोई उसके खाने को, उसके बाग को सराह रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर की आंखों में अरमान को कुछ खास नहीं मिला और उसने बेपरवाही से एक नज़र सब देखा और नाश्ता खाने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस सजावट या एक से बढ़कर एक व्यंजनों से उसका कोई खास लगाव नहीं था। उल्टा राजवीर की आंखें इधर उधर जा तो रही थीं, लेकिन केवल उन दो आंखों को देखने के लिए। उसे लगा था अरमान के घर में पार्टी होगी तो वो लड़की जरूर होगी, क्योंकि उस दिन मॉल में वो उसके साथ थी। पर हर जगह नजर दौड़ाने पर भी उसे कुछ नहीं मिला। पार्टी अपने चरम पर थी। कोई खाना खा रहा था तो कोई डांस देख रहा था तो कोई बाग की खूबसूरती। हर कोई अपने में मग्न था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उस पार्टी में बिना बुलाए किसी की एंट्री हो चुकी थी। जोया पर नजर रखने के लिए अरहम ने एक पहरेदार लगा दिया था, लेकिन जैसे ही वो पहरेदार थोड़ा सा इधर उधर हुआ, जोया अपने कमरे से तुरंत निकल गई और छिपते छिपाते बाग के पिछले हिस्से में पहुंच गई। जोया एक बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहने पार्टी में आई थी। उसने अपना चेहरा ढंक रखा था, उसकी केवल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। जोया का प्लान था इस पार्टी में वो हंगामा करेगी, अपने साथ हो रहे जुर्म के बारे में चीख चीख कर सबको बताएगी और मदद की गुहार करेगी और उन दोनों पागलों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाएगी। जोया धीरे धीरे पिछले वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगी। अभी तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। जोया ने तय किया वो सीधा मंच पर जाएगी। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। उधर राजवीर को वहां कुछ घुटन सी होने लगी थी। वहां जो हो रहा था सब कुछ उसे ज्यादा ही लग रहा था, इसलिए वो एक पे हाथ में लिए पूरे बाग में इधर उधर टहलने लगा। जोया तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे डर था कहीं वे दोनों पागल उसे देख ना ले, इसलिए वो लगातार तेजी से चलती हुई जल्द से जल्द मंच तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वहां एक ही जगह थी जहां वो अपनी बात सबके सामने रख सकती थी। इसी जल्दबाजी में वो सामने से आने वाले आदमी से टकरा गई और उस आदमी के हाथ से पेय का ग्लास टूटकर बिखर गया। ग्लास टूटते ही सभी की निगाहें उसी ओर चली गईं। जोया ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ महोदय, मैं सच में माफी मांगती हूँ। जिससे जोया टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर सिंघानिया था। राजवीर जोया को देखता ही रह गया। ये वही दो आंखें की जिन्हें वो कब से इस पार्टी में ढूंढ रहा था। हालांकि उसका चेहरा दुपट्टे से ढंका था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थी। जोया माफी बोलकर जल्दी से मंच तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। जोया ने घबराकर पीछे देखा तो उसके पीछे अरहम खड़ा था। अरहम को यकीन था जोया कुछ न कुछ जरूर करेगी। वो उस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था, और जैसे ही जोया राजवीर से टकराई सभी का ध्यान उस ओर चला गया था। अरमान को एक सेकंड नहीं लगी थी उसे पहचानने में। वो उन तीनों से अच्छी खासी दूरी पर था, लेकिन जोया पर नजर पड़ते ही वो उसे पहचान गया और जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ने लगा। जोया ने अरहम से कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। उसे तो तमाशा करना था, इसलिए वो थोड़ा जोर से चिल्लाकर बोली थी, जिससे सभी का ध्यान उस ओर चला गया था। चूंकि राजवीर वही था वो खामोशी से उन लोगों को सुन रहा था। वो चाहता तो एक पल में जोया का हाथ छुड़वा सकता था और अरहम का मुंह तोड़ सकता था, लेकिन वो चुप रहा। पहले वो सब कुछ जानना चाहता था। जल्दबाजी में वो कुछ भी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अरहम ने कहा, ओह प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो चलो, अंदर चलो और आराम करो। तुम्हारा पार्टी में आना ठीक नहीं है, अरहम ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा। इससे पहले कि जोया कुछ कहती, राजवीर बीच में ही बोला, अरे अरहम साहब, आपने इनसे नहीं मिलवाया हमें, ये कौन है?
वो दरअसल राजवीर सर, ये मेरी पत्नी है, अरहम थोड़ा हकलाकर बोला। ओह, राजवीर ने गहरी सांस ली। वो समझ गया ये सरासर झूठ बोल रहा है, वो भी एक बेहद बुद्धिमान और मनोविश्लेषक के सामने। इससे पहले राजवीर कुछ कहता तब तक अरमान वहां आ चुका था। अरमान आते ही बोला, क्या हुआ दोस्त? अरमान ने जोया को अनदेखा करते हुए कहा। तभी अरहम बोला, वो दरअसल अरमान यार, तुझे तो पता है जोया की तबीयत कितनी खराब थी। लाया तो मैं इसे पार्टी में शामिल होने के लिए ही था, लेकिन जब इसकी तबीयत बिगड़ गई तो मैंने इसे आराम करने के लिए आपके बंगले के एक कमरे में लिटा दिया था। लेकिन ये देखिए, हमारी मैडम तो पार्टी में ही आ गई और हमें पता भी नहीं चला। अरहम ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ओहो अरहम, तुम भी कमाल करते हो यार। जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो तुम्हें इनके साथ होना चाहिए था, और तुम हो कि खुद यहाँ पार्टी का मज़ा ले रहे हो। शायद इसीलिए तुम्हारी मैडम को तुम पर गुस्सा आ गया है, अरमान ने एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, जबकि वो अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी जोया बोली, बंद करो अपना नाटक, तुम दोनों पागल, मैं आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि जोया आगे कुछ कहती उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवीर आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए चालाकी से अपने साथ लाया हुआ सामान उसके कपड़ों में छिपा दिया, वो भी इस तरह से कि वहां मौजूद दोनों भाइयों को कुछ पता नहीं चला। तभी अरहम आगे बढ़ा और जोया को गोद में उठा लिया और बोला, मुझे माफ करना सर, दरअसल मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, मैं माफी चाहूंगा मेरी वजह से आपकी पार्टी में जो गड़बड़ी हुई। तभी अरमान ने कहा, अरे यार कैसी बातें कर रहा है तुम, जाओ इन्हें कमरे में ले जाओ और ध्यान रखो इनका, ठीक है? जाओ जल्दी। ठीक है ब्रो, शुक्रिया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरहम ने जानबूझकर दोस्त शब्द इस्तेमाल किया ताकि राजवीर को कोई शक न हो, और वो जोया को लेकर उसके कमरे में चला गया। अरहम गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि वे लोग आज बाल बाल बचे थे, आज बहुत कुछ हो सकता था, उनकी इज्जत दौलत शोहरत सब एक ही झटके से जा सकती थी। तभी अरहम ने सामने पड़े कांच के टेबल पर अपना हाथ मारा, जिससे पूरी टेबल टूट गई और अरहम का हाथ खून से रंग गया। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। वो अब बस बेसब्री से जोया के होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे सबक सिखा सके। दूसरी ओर अरमान ने सभी विदेशी लोगों से कह दिया था कि वो लड़की उसके दोस्त की पत्नी है जो मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए आप लोग कृपया पार्टी का आनंद ले, और सभी लोग पार्टी में व्यस्त हो गए। वहीं राजवीर काफी कुछ जान गया था, वो तो बस अब इंतजार कर रहा था कि जैसे ही जोया होश में आए उसका दिया हुआ सामान वो इस्तेमाल करे और अरमान को कुछ भी पता न चले। राजवीर मन ही मन सोच रहा था उसका आधा से ज्यादा काम हो चुका था, अब उसका पार्टी में रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अरमान के पास आया और बोला, माफ करना ब्रो, एक काम था। अरमान ने कहा, हाँ ब्रो, बोलो कृपया। वो बोला, अरमान दरअसल मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर जाना होगा, और तुम जानते हो हमारा इस शहर में और कोई नहीं है, और नौकरों के भरोसे मैं अपनी माँ को ज्यादा देर नहीं छोड़ता हूँ। राजवीर कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें विनती की क्या जरूरत है, तुम जाओ और आंटी का ख्याल रखो, ठीक है? पार्टी तो हम और किसी दिन मना रहेंगे, और अब तो हम साथ ही रहेंगे इसलिए रोज पार्टी होगी, अरमान ने खुशमिजाज लहजे में कहा। तभी राजवीर सबसे मिलकर अपने घर की ओर रवाना हो गया।